इतना है प्यारा।
ओम शांति। अभी हम सभी के बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा बहन जी उपस्थित है। हम सभी शारदा बहन जी का स्वागत करेंगे। बहन जी पिछले 45 वर्षों से बाबा के सेवा में उपस्थित है। अहमदाबाद में हमारा एलिस्पेस सेंटर है और उसके आजू बाजू के सेंटर्स को आप संभाल रहे हैं। एक पांव अहमदाबाद में है और दूसरा पांव मधुबन में है, समझा? तो इसीलिए बाबा ने सेवा के लिए निमित्त बनाया हुआ है। अभी भी नीचे हमारी टीचर्स भट्टी चल रही है, वो आप सबको पता ही है। तो वो भट्टी के कोऑर्डिनेशन के लिए भी और भट्टी के लिए भी आए हुए हैं, तो उनको खींच के ऊपर ले आए हैं, समझा? कुमारियों की भी भट्टी चल रही है, एक साथ दो भट्टी चल रही है। तो इसलिए आप सभी के योग ने शारदा बहन जी को ऊपर खींच लिया है, समझा? तो जो विशेष बाबा का इशारा रहा लास्ट सीजन में कि हमें अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना है और विघ्न विनाशक बनना है, तो उस विषय में कैसे निर्विघ्न बने, क्योंकि अनेक बातें तो लाइफ में, परिवार में, व्यवहार में आती है, तो कैसे स्वयं निर्विघ्न बने और विघ्न विनाशक बने, उन बातों को लिए हुए अपने अनुभव युक्त बातें हमें बताएंगे बहन जी शारदा बहन।
ओम शांति। आप सब बाबा की इस बेहद की संगम की भट्टी के बीच स्पेशल भट्टी में बैठे हैं और वो भी ब्रह्मा बाप और मीठी मम्मा और दादियों की उस त्यागी और तपस्वी भूमि में, जहां भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा साकार सृष्टि पर अपने चरित्र रचे, तो इस धरणी के ही वाइब्रेशंस, उसकी शक्तियों के अनुभव स्वतः ही अनुभव होते हैं। जो आप सबने अनुभव किया होगा कि बाबा को याद करने की जरा भी मेहनत लगी, नेचुरल याद है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपने आप को क्या समझो, क्या समझो? मधुबन निवासी समझो। तो वो स्मृति ही सहज योग युक्त बना देगी। पर आज विशेष आप सब दो दिन से तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते इतनी शक्तियां अपने में भरपूर की होंगी जो बाप दादा हम सबको बार बार कहते, निर्विघ्न बनो और विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट बाबा से लो। अब नंबर 1 कौन लेता है? कौन लेगा? बोलो कौन लेगा? मैं आत्मा लूंगी। इतनी दृढ़ता से, इतने नशे से, इतने रुहाप से मुझे नंबर वन सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि विघ्न विनाशक का यादगार कौन है? श्री गणेश। तो श्री गणेश आप ही करेंगे ना फिर नंबर वन सर्टिफिकेट लेने का। तो यादगार जब गणेश है, और गणेश यादगार क्यों बना? विघ्न विनाशक का और कोई नहीं बना। हाँ, क्यों गणेश बना बोलो जी? क्या? माता पिता की आज्ञा का पालन किया और पुराना सिर काट करके और माँ को अर्पण कर दिया। देखो प्रश्न ये हुआ, क्यों विघ्न विनाशक का यादगार गणेश बन गया? कि कहा देवताओं की मीटिंग हुई और प्रश्न उठा कि सबसे पहली पूजा किसकी हो। वो कहे मेरी, वो कहे मेरी, वो कहे मेरी। तो फिर फाइनल किया ब्रह्मा जी ने, जो सृष्टि का चक्र सबसे पहले लगा करके आएगा उसकी पूजा पहले होगी। अब गणेश जी थे बड़े होशियार, उसने कहा मेरा बाप तो है कौन? सृष्टि का रचयिता। तो उसने सृष्टि के रचयिता शिव का चक्कर लगा लिया और सबसे पहले पहुंच गया। तो सर्वशक्तिवान के चक्कर लगाए और वो पहले पूजा गया। तो बुद्धिवानी का काम किया ना। तो इतना विश्व का भ्रमण, उसका भाई कार्तिकेय तो सारी दुनिया का चक्कर लगाने चला गया, तो शाम तक भी नहीं पहुंचा और ये तो एक मिनट में आकर के बैठ गया। तो बाबा भी हम सबको क्या कहते? स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। और स्वदर्शन चक्र की नॉलेज फुल बनो, नॉलेज फुल बनो, क्योंकि विश्व रचयिता ने सारे सृष्टि चक्र की, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी। और उस आदि मध्य अंत की नॉलेज को मैं स्व का दर्शन करूं। जितना स्व का दर्शन करते रहेंगे तो यादगार में फिर दिखाया श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया तो असुरों के गले कट गए। सारे विघ्न जो भी असुर डालने वाले थे सबके गले कटते गए। तो वो सुदर्शन चक्र, वो कहते सुदर्शन चक्र, सु माना अच्छा, और बाबा हमको कहते स्वदर्शन चक्र। स्व वो सुदर्शन, सुदर्शन घुमाने से अच्छे बन जाएंगे। फोन का स्विच ऑफ कर देंगे तो अच्छा है। भोली माताएं हैं। तो चक्र में अपना दर्शन करेंगे तो अच्छे बनेंगे, और स्व का दर्शन करेंगे कि मैं क्या थी, क्या बनी, अब क्या बन रही हूं। तो व्यर्थ के जो चक्र चलते हैं, माया के जो चक्कर चलते हैं, उससे मुक्त हो जाएंगे। तो वास्तव में निर्विघ्न भी बनना है और विघ्न विनाशक भी बनना है। अब निर्विघ्न माना ये नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं। टाइटल है विघ्न विनाशक। विघ्न आएंगे तब तो विघ्न विनाशक का टाइटल मिलेगा। विघ्न आए ही नहीं और हम कहें विघ्न विनाशक हैं जी, कैसे होगा। और निर्विघ्न स्थिति है विघ्न हो लेकिन मेरी स्थिति अचल अडोल और स्थिर रहे। तो वास्तव में कहां कहां से कौन कौन से विघ्न आते हैं पहले हम वो अपने अंदर रियलाइज करें। व्यक्ति से, व्यक्ति के स्वभाव संस्कारों से, संबंधों से। दूसरा वैभवों से और पदार्थों के कोई ना कोई प्रकार की इच्छाएं, आशाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं, चाहे वैभव से है, पदार्थों से है या व्यक्तियों से है, वो विघ्न रूप बन जाते। स्वयं के स्वभाव संस्कार, औरों के स्वभाव संस्कार आदतें, वो विघ्न बन जाती। कभी कभी स्थान विघ्न बन जाता है, धरणी विघ्न बन जाती है, क्योंकि पांच तत्व है वो तमो प्रधान है। उस तमो गुण का और तमो प्रधानता का असर पड़ जाता है। हमारे अंदर और बाहर की जो प्रकृति है वो हलचल मचाती है, वो विघ्न बन जाती है। इन सारे विघ्नों से हम स्वयं को निर्विघ्न बनाएं, सबसे पहली बात अपनी नेचर को डोंट केयर बनाएं। डोंट केयर वाली नेचर हो। अब डोंट केयर वाली नेचर कैसे हो। कल सुबह में गुलजार दादी से रो रोहान कर रहे थे। तो दादी ने सुनाया, कुछ प्रश्न उत्तर चल रहे थे। कहा अभी ये जो समय आ रहा है, इस समय में बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें विघ्न रूप बनेंगी। तो कहा दादी फिर क्या करें। कहा उन बातों को कभी भी अपने चित्त पर नहीं लाना। चित्त माना हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड माना जैसे किसी ने मुझे कुछ कह दिया, आपने मुझे कुछ कह दिया तो मेरे को अंदर लग गया, इन्होंने मुझे ऐसा बोला और वही बात इन्होंने मुझे बोली तो इनका बोल मुझे नहीं लगा लेकिन इनका बोल मुझे लग गया। क्यों क्यों, अंतर क्या हुआ। इनसे मैं बहुत फ्री हूं, इजी हूं, फ्रेंडशिप ज्यादा है, क्लोज हूं, इनसे नहीं हूं, इसलिए इनकी वो बात मैं नहीं सुन सकी। मुझे क्यों बोला, लग गया अंदर तीर जैसा। और जैसे ही तीर जैसी लगी यहां हलचल शुरू हो गई। व्यर्थ चला, नेगेटिव चला, उसने मेरी स्थिति पर असर डाल दिया, बाबा से योग टूट गया। वही बात इन्होंने कही, कोई बात नहीं, इनकी तो आदत है, ये बोलती रहती है। कैसे अवॉइड कर लिया? इनकी तो आदत है, ये तो बोलती है, इसलिए माइंड नहीं करना। तो इनकी आदत नहीं है, इनकी आदत नहीं है, उनकी बोलने की बात को मैंने आदत कह करके डोंट केयर कर लिया, लेकिन इनकी बात को डोंट केयर नहीं कर सकी, मुझे लग गया। क्यों? मेरी नेचर इनसे इजी है, इनसे इजी नहीं है। तो मैंने किसको देखा? देह को देखा या आत्मा को देखा? तो मेरा अभ्यास आत्मा देखने का पक्का नहीं है, इसलिए मुझे मन को सहयोग देना है। किसी की विशेषता है या किसी की कोई कमी है, मैं उस बात को महसूस करके अपनी नेचर को टोटल इजी करूं। इजी नेचर होगी, कोई भी बात को वो लेट गो कर लेगा, डोंट केयर कर लेगा। कोई बात नहीं, कह दिया तो हुआ क्या, मुझे कहां लगा, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, कहीं खून आ गया, कहीं घाव हो गया, कहीं फ्रैक्चर हो गया, किसके कहने से? हाँ, मन में बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ, बाहर तो नहीं हुआ। पर इजी हो जाओ ना, इतना क्यों सोचते हो, इतना क्यों विचार करते हो, टेंशन क्यों हो गया, बहुत सोच में चली गई, उसमें नुकसान क्या हुआ, किसका हुआ? कहने वाला तो कह के चला भी गया, वो अपने काम में भी बिजी हो गया, और मैंने उसकी बात को पकड़ लिया। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक बार दो सन्यासी कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ती थी, और नदी में पानी बहुत नहीं था, इसलिए नदी के पानी में से चल करके जा सकते थे, लेकिन एक छोटी 5 साल की बच्ची थी, उसके लिए वो पानी बहुत ज्यादा था, उसके यहां तक पानी आ जाता था। तो किनारे पर खड़ी थी कि कोई आए तो मुझे उठा करके पार कर दे। तो सन्यासी आए तो उन्होंने कहा, मुझे नदी पार कराएंगे? तो छोटी बच्ची, एक सन्यासी ने उसको कंधे पर बिठाया और नदी पार करा दी। बच्ची तो चली गई। दोनों सन्यासी जा रहे थे, थोड़ी देर के बाद दूसरा सन्यासी उसको कहता है, तूने सन्यास धर्म का उल्लंघन किया, एक स्त्री को टच तो छोड़ो, कंधे पर बिठा लिया। कहा, मैंने तो उसको उतार दिया कब से, तू तो अभी तक उसको कंधे पर बिठा करके चल रहा है। मैंने कर्तव्य निभाया, तुम तो अभी तक बिठा कर चल रहा है। हम ऐसे करते हैं, कोई बात हो जाती, इतना संकल्प चलाते व्यर्थ का, इतना चिंतन शुरू हो जाता, अपना समय, शक्ति और संकल्प तीनों वेस्ट करते, और वो तीनों आत्मा की उन्नति में, स्थिति में सबसे बड़ा विघ्न डाल देते। जबकि बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा की बहुत बहुत गुह्य नॉलेज दी है, ऊपर से ड्रामा नहीं देखना, गहराई से ड्रामा को महसूस करो। कि बाबा ने कहा, हर आत्मा का पाठ अपना अपना है, एक्यूरेट है और परफेक्ट है, और मुझे कहा, हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर के देखो, तो मजा ले सकेंगे, तो उसका आनंद ले सकेंगे, तो प्रसन्न चित रहेंगे। अगर क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न किया तो पेपर में फेल हो जाएंगे। क्यों कहा, किस लिए कहा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये भी तो ज्ञानी तो आत्मा है। इसी हॉल में बैठे हैं, मुझे बड़ी दीदी याद आई इसी पर ही, जब ये हॉल बना था टीचर्स बहनों की भर्ती हुई, यहां ही बैठे थे, मैं वहां बैठी थी और दीदी हम सबसे रूरूहान कर रही थी और दीदी ने सीधा खड़ा किया और कहा एक प्रश्न का जवाब दो, आप सेंटर पर रहते हो, आपस में बहनों में कभी कोई बात पर टकराव हो जाता है या कोई बात होती है तो हलचल होती है, उस समय आप क्या करती हो? एक सेकंड तो विचार किया क्या जवाब दूं, फिर कहा दीदी उस समय सोचती हूं, ड्रामा में ऐसा ही था, इसने ऐसा बोल दिया या ऐसा कर लिया, इसका पार्ट था, उस घड़ी ये सोच करके यहां फुल स्टॉप लगाती हूं, थोड़ी देर के बाद फिर अंदर चलता है, इसको भी तो ज्ञान है, ये भी तो सेंटर पर रहती है, ये भी तो नॉलेजफुल है, ज्ञानी तो आत्मा है, फिर इसने ऐसा क्यों किया? तो दीदी कहती है मुट्ठी फिर तुझे ड्रामा का ज्ञान है कहा, यहां ज्ञान है, प्रैक्टिकल में नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है। अपने को उसी सेकंड चेक किया, महसूस किया, सुनाने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन जब बात मेरे ऊपर आती है सच में ड्रामा की पटरी पर, मैं स्थिर अचल अडोल अंगद समान खड़ी रह सकती हूं, बिगर क्या क्यों का प्रश्न उठाए। अपने को चेक करो, ये महसूसता जब परिस्थितियां आती है तब मेरी स्थिति निर्विघ्न है, कोई भी बाहर की परिस्थिति का किसी का भी प्रभाव और दबाव मेरी स्थिति को हलचल में ना ला सके। इसका एक और मिसाल बताती, एक युगल हमारे पास आते, एक बार शाम के समय वो अपने सोशल काम से बाहर गए थे, 10 साल का बच्चा उनका ग्रैंडसन घर में था, बाजू वाले को बोल के गए बच्चा घर में है, उसका कल एग्जाम है, वो पढ़ रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखना, हम लोगों को लेट हो जाएगा। ड्रामानुसार वो बच्चा पढ़ता पढ़ता सो गया और शॉर्ट सर्किट हुआ बेसमेंट में और वहां 6 गैस के सिलेंडर पड़े हुए थे, 2 ही मिनट में आग कैसी भड़की और बंगलोज में सारा वुडन फर्नीचर होता है धुआं निकला, बाजू वाले ने देखा ये धुआं कहां से आ रहा है, दौड़ करके वो लोग आए, दरवाजा बंद था, तोड़ा, बच्चे को बाहर निकाला, बंगला तो एक आधे घंटे में जब तक फायर ब्रिगेड भी पहुंचे बिल्कुल भस्मीभूत हो गया। अभी जब तक उनों से भी कांटेक्ट हो, वो भी रात को 11 बजे पहुंचे, तब तक तो बिल्कुल भूत बंगला हो गया। ठीक है, जो रिपोर्ट करनी थी किया, सुबह क्लास में आए और वो बिल्कुल सामने ही बैठते थे, बड़े प्यार से मुरली सुनी, पूरी हुई, फिर कहा दीदी रात को बंगला जल गया। बात ऐसी नॉर्मल कर रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं, मैंने कहा क्या कहा? कहा रात को बंगला जल गया, भूत बंगला हो गया है। फिर भी मैंने कहा ये मेरे को टीज कर रहे हैं या मेरा पेपर तो नहीं ले रहे हो? कहा क्या बोला? कहा रात को बंगला जल गया, भूत बंगला हो गया। मैंने कहा बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई खिलौना जल गया हो। मैंने कहा आपको विचार नहीं चला? कहा बाबा को इससे बढ़िया बना के देना होगा ना, इसलिए वो जल गया। सच में जाकर के देखा तो एक चीज भी बची नहीं, एक चीज भी नहीं। और स्थिति देखो, नंबर वन, जरा भी लहर नहीं है कि इतना बड़ा बंगला जल गया, इतना नुकसान हो गया। तो उस समय मैंने खुद ने महसूस किया कि प्रैक्टिकल ये स्थिति मुझ आत्मा की है। ये तो नुकसान हुआ, तो विघ्न तो है हमारे सामने, तो छोटी छोटी बातें आती हैं। किसने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, कुछ टकराव हो गया, तो भी हम हलचल में आ जाते हैं। उसका कारण प्रैक्टिकल, ज्ञानी तु आत्मा, योग युक्त स्थिति। और सर्वशक्तिवान बाबा ने जो सर्वशक्तियां हमको दी है, उन शक्तियों को प्रैक्टिकल यूज नहीं करते हैं। और जो बाबा ने सारे दिन भर की दिनचर्या अमृत वेले से रात तक हमको ईश्वरीय मर्यादाएं, अमृत वेला, गॉडली स्टूडेंट्स लाइफ, अपने चार्ट की चेकिंग, उसको मैंने अपनी दिनचर्या का आधार नहीं बनाया है। सारा दिन में बाबा ने हमको 5 बार, रात को 9:30 का गिनती करें तो 6 बार ट्रैफिक कंट्रोल दिया है। एक एक घंटे का, एक एक मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल है। अपने दिल पर हाथ रख के पूछें, सच में हम एक्यूरेट ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं? एक्यूरेट? या गीत बजता है वो अपना काम करता है और मैं अपना काम करती हूं? नहीं, ये हमको बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। ट्रैफिक कंट्रोल मीन्स ट्रैफिक कंट्रोल। उस समय मेरा मन और बुद्धि कहीं भी ना जाए, एकदम मैं और बाबा, दूसरा कोई ना हो, आत्मा को शक्तियां से भरपूर करेगा। लगन की अग्नि हमारी तेज होगी। जैसे अग्नि तेज होती है तो क्या करती है? किचड़े को भस्म करती है। हमारी लगन की अग्नि तेज होगी तो जितने पुराने स्वभाव संस्कार है, जितने लगाव झुकाव है, जितने विघ्न है, उन विघ्नों को भस्म करेगी। पर लगन की अग्नि तेज चाहिए, फुल फोर्स की चाहिए। और वो लगन की अग्नि ही कर्म योग का बैलेंस रखती, और वो कर्म योग का बैलेंस जो फिर सबसे बड़ा विघ्न कर्म भोग का आता है, बीमारी का हिसाब किताब आता है, उस बीमारी को, उस कर्म भोग को कर्म योग परिवर्तन कर लेता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव, चाहे मीठी मम्मा को देखा, चाहे साकार बाबा को देखा, बाबा का एक बार ऑपरेशन हुआ और थिएटर से जब बाहर रूम में लेकर के आए, डॉक्टर फिर देखने के लिए आया, इससे पहले कि डॉक्टर बोले, बाबा पूछता है, डॉक्टर आप थक गए होंगे ना, रेस्ट कर ले। डॉक्टर तो बाबा को देखता ही रह गया कि मैं पेशेंट को पूछने आया हूं और ये मुझे कहता है आप थक गए होंगे, रेस्ट कर ले। मम्मा का लास्ट घड़ी तक का चेहरा ऐसा चमकता रहा जैसे चंद्रमा। आज दादी जानकी को देखो, इतनी बड़ी आयु होते शरीर कितना खिटपिट कर रहा है, लेकिन चेहरा एक बाबा दूसरा ना कोई, किस में भी बुद्धि जाती नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ठीक है, शरीर शरीर का काम कर रहा है, लेकिन ये मुख ज्ञान रतन ही निकालता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो शरीर का हिसाब किताब भी याद में, स्थिति में विघ्न नहीं डाल सकता है, क्योंकि बाबा से मेरा कनेक्शन बहुत बहुत क्लियर है। सर्व संबंध मेरे एक बाबा से है। तो बाबा का ये महावाक्य देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो, वो टूटा होगा तो बाबा सर्व शक्तियों की सकाश मुझ आत्मा को देते रहेंगे, बाबा की वो एक्स्ट्रा मदद मिलती रहेगी। जो जरा भी स्थिति, कोई भी बात और परिस्थिति में हलचल में नहीं आए, इतना मेरा बाबा से एक्यूरेट कनेक्शन और सारे दिन भर का ट्रैफिक कंट्रोल, सारी समस्याओं का, विघ्नों का समाधान है। एक याद है समाधान, सिवाय याद के कुछ नहीं। तो ऐसी याद की अग्नि निरंतर प्रज्वलित हो, बुझे नहीं। जैसे वो सूर्य की लाइट, सूर्य की किरणें कीटाणुओं को भस्म कर देती हैं, ऐसे याद की अग्नि सारे विघ्नों को भस्म करती है। वो ज्वाला स्वरूप की याद हो, जैसे कैंसर पेशेंट को रेडिएशन देते हैं ना, रेजिस देते हैं, तो जहां उसके जर्म्स हैं वहां रेजिस दे करके उसको जला देते हैं, ऐसे ही मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके अमृत वेले ज्ञान सूर्य बाबा से सर्व शक्तियों की लाइट और माइट की रेजेस अपने में अनुभव करो, और उस अनुभव करने के साथ साथ इस बुद्धि रूपी कलश में उन सर्व शक्तियों को धारण करो, क्योंकि अमृत वेले का समय ऐसा समय है जब तमोगुण दबा हुआ है, क्योंकि सब सोए हुए हैं, इसलिए उस समय तमोगुण का प्रभाव कम से कम है। तो वो अमृत वेला मेरे लिए ऐसा है जैसे कि वरदान, उस समय का मैं पूरा पूरा फायदा लेकर के उन शक्तियों को अपने में भरपूर करूं, तो कोई विघ्न टिकेगा नहीं। जो कल बाबा ने वरदान में कहा, क्या कहा? कंबाइंड। तो कंबाइंड कौन? करणहार और करावनहार, ये कंबाइंड स्वरूप को अनुभव करो। भक्त लोग कहते हैं जहां देखता हूं तो ही तू है, और हम क्या कहते हैं? बाबा मेरे अंग संग है। कितना अंतर है, कितना अंतर है? कहते जहां देखता हूं तू है, तो मेरे से तो डिस्टेंस हो गया ना, और ये तो मेरे अंग संग है। तो जो है ही सर्वशक्तिवान मेरे अंग संग, उसको विघ्न कहां से आएगा? तो योग की शक्ति का कवच मेरे चारों तरफ रहे, तो कोई विघ्न मुझे अटैक नहीं कर सके। भले आए, वेलकम है, मना नहीं है उसको। माया स्वभाव के रूप में आएगी, संस्कारों के रूप में आएगी, पुरानी आदतों के रूप में आएगी, तेरे मेरे के रूप में आएगी, मान शान के रूप में आएगी, छोटे बड़े के रूप में आएगी, देह अभिमान के रूप में आएगी। भले आओ, वेलकम। लेकिन उसको बोलो, देखो माया मौसी, मैं अभी थोड़ी ना शिव बाबा की याद में बिजी हूं, तुम द्वापर में आ जाना ना, फिर हम मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, फिर जितना टाइम तुमको मेरे साथ रहना हो ना, रह लेना। अपॉइंटमेंट दे दिया ना तो खुश होके चली जाएगी। उसको ये कहेंगे माया आ गई, अभी क्या करूं, तो वो पूरा ही हप कर जाती है। उसको विद रेस्पेक्ट विदाई दे दो, उसे प्यार से बात कर लो ना, थोड़ा बिजी ज्यादा हूं, आपसे बैठ नहीं सकेंगी, मिल नहीं सकेंगी, आपको वेट करना पड़ेगा, बेटर है द्वापर में आएंगे, हम मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते मालिक और बालक का बैलेंस रखो। मेरा विचार, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मैं इतना पुराना, मेरा मानना चाहिए, कितना बड़ा खुद के लिए विघ्न। दूसरों के लिए तो है, लेकिन खुद के लिए कितना बड़ा विघ्न। बैलेंस नहीं है। इसलिए बाबा सदा कहते लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखो, लव और लॉ का बैलेंस रखो। ये बैलेंस की कला हमको न्यारी और प्यारी स्थिति में ले जाएगी, उपराम स्थिति में ले जाएगी, हलचलों से परे हो जाएगी। तो खुद ज्ञान से स्वयं की सूक्ष्म पालना करें, खुद की सूक्ष्म पालना करें। कैसे करें? अपने आप से बात करें। वो बाबा का एक फोटो नहीं है, दादी जान के देती है, तो चिंता ना कर, मैं बैठा हूं। अपने को याद कराते हो घड़ी घड़ी, कोई बात आती है तो याद कराते हो, हे आत्मा तू चिंता ना कर, बाबा बैठा है, निश्चिंत रह। बाबा का दुआओं का हाथ तुम्हारे सिर पर है, बाबा की छत्र छाया सिर पर है, सर्व शक्तियों की छत्र छाया के नीचे हो, चिंता नहीं करो, सोचो नहीं, जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। इसलिए हे आत्मा तू क्यों चिंता करती है? जब दूसरा कोई प्रॉब्लम लेके आता है, आप कैसे उसको समझाते हो, कैसे समझाते हो, कैसे उसको सिंपैथी देते हो, कैसे उसको कन्विंस करते हो? खुद से ऐसे बात करके, खुद को समझो। यह है खुद की सूक्ष्म ज्ञान से पालना करना, अपने आप की केयरिंग करो। बाबा ने तो कहा ही है, बच्चे माया आएगी, विघ्न आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे, प्रकृति के पांचों तत्वों के आएंगे, पांचों विकारों के आएंगे, संबंधों के आएंगे, स्वभाव संस्कार के आएंगे, ब्राह्मणों के आएंगे, सब के आएंगे, सिर्फ बाबा को भूलना नहीं। हम भूल जाते तो विघ्न क्या करे। इसलिए इस लक्ष्य को इतना सामने इमर्ज रखो, कोई भी हालत में लक्ष्य भूले नहीं। लक्ष्य भूला तो हलचल में आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, मायावार करेगी। सीता को रावण ने कब उठाया? हाँ, उसको मना किया था ना, फिर मना करने के बावजूद भी उसने रेखा पार की ना, मर्यादा का उल्लंघन किया तो रावण लेके गया ना, नहीं तो उसमें ताकत थी उसको ले जाने की? नहीं ना। हम सुबह से लेकर के रात तक सारा दिन कितनी लक्ष्मण रेखाओं को पार करते हैं, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध में, संपर्क में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, पहनने में, बोलने में। तो सारा दिन क्या करते, सारा दिन क्या करते, लक्ष्मण रेखा पार करते। फिर क्या होता, तो घड़ी घड़ी रावण ले जाता है, तो सारा दिन किसके पास सोते हैं? हाँ, होना किसके पास चाहिए? फिर कहते बाबा शक्ति दो, बाबा मदद करो। बाबा तो मदद ही नहीं करता है, शक्ति ही नहीं देता है, इतना याद करती हूं, पर मैंने क्या किया? गफलत किसने की? लक्ष्मण रेखा पार किसने की? तो मेरे को भोगना भोगनी ही पड़ेगी। सीता ने तो एक बार लक्ष्मण रेखा पार की, परंतु फिर वो राम से मिल नहीं सकी। आई भी, अग्नि परीक्षा देकर के आई भी, फिर भी कलंक लगाना, फिर जंगल में गई और अंत क्या हुआ, धरती में समा गई। उसकी एक बार की लक्ष्मण रेखा पार करने के रिजल्ट ये, और हम सारा दिन पार करते हैं तो रिजल्ट क्या होगी, प्राप्ति क्या होगी? सारा दिन फिर पत्थर तोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी प्राप्ति जीरो हो जाती है, फिर थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ये काम मुझे नहीं करना है। छोटा बच्चा कुछ करता है ऐसा, तो उसको बार बार कितना अटेंशन दिलाते, इधर नहीं जाना, नहीं जाना, हवा आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। खुद को याद कराओ ना कि बाबा ने कहा बच्चे ये नहीं करना, तो मैं बाबा की आज्ञा पर कितना हूं, बाबा की आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान वरदार बनकर चलूं, तो विघ्न मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि ये विघ्न है पेपर्स। तो पेपर कोई भी व्यक्ति देता है किस लिए, प्रोग्रेस के लिए ना, प्रमोशन के लिए, कि पेपर से घबराता है वो, हाय पेपर आ गया। पेपर है हमारी प्रोग्रेस का साधन, पेपर है मुझे मजबूत बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए नहीं है या डराने के लिए नहीं है, ये तो मुझे और ही स्ट्रांग बना रहे हैं, अनुभवी बना रहे हैं। पेपर आ गया, पेपर आ गया, उसको हवा नहीं बना दो, लेकिन मैं कितना स्ट्रांग बन रही हूं। गीत दुनिया वाले गाते, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, मेरा तो साथी क्या, मेरा तो सब कुछ है, वो मेरा वो सब कुछ है, लेकिन बाबा को यूज करूं। हम बाबा को यूज नहीं करते, बाबा को एक साइड रख देते हैं और फिर हम काम करना शुरू करते हैं। नहीं, बाबा को यूज करो हर काम में। चलो बाबा मेरे साथ ऑफिस, आज सारा दिन ये काम आपको करना है। चलो बाबा मेरे साथ खाना बनाओ, सफाई करो, वॉशिंग करो, क्लीनिंग करो, कुकिंग करो, बाजार चलो, सब बाबा के साथ में करो। कंबाइंड कैसे होंगे नहीं तो, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो ना, कहने मात्र कंबाइंड नहीं है, प्रैक्टिकल करनहार और करावनहार की स्मृति रहे। करनहार आत्मा इंद्रियों से कर रही है, करावनहार बाबा करा रहा है। बड़ी दादी हमेशा कहती थी, बाबा मेरे कंधों पर बैठा है और मेरे से कराता है, दादी नहीं करती है, बाबा कंधों पर बैठ करके करा रहा है। तो हनुमान ने छाती फाड़ कर दिखाई कि मेरे अंदर राम सीता है, उसने तो सिर्फ छाती फाड़ी थी, मेरा रोम रोम खोल के देखो सिवाय बाबा के कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी रग रग में बाबा की याद समाई हुई हो, इतना सर्व संबंधों का बाबा से प्यार हो, जो कोई संबंध भी विघ्न ना पड़े, वो भी विघ्न ना डाले। फिर मुझे इस पर दीदी याद आ गई, हम लोग नए नए सेंटर पर रहने लगे, दिल्ली पांडव भवन रहते थे, दीदी एक बार आई हुई थी, तो रात को बैठे थे दीदी से, दीदी जितनी ही रमणीक थी ना उतनी ही बहुत बहुत श्रूर थी, बहुत श्रूर, आप कल्पना नहीं कर सकते, आपकी एक्सरे और सीटी स्कैन तो आपका क्या एक्सरे निकालता होगा, आप एक सेकंड दीदी के सामने खड़े हो जाएं, आप क्या हो सारा आपका अंदर बाहर आ जाए, इतनी शरूर थी। तो रू रूहन कर रही थी, तो दीदी कहती है आप बाबा को कौन से संबंध से याद करते हो, सबने जवाब दे दिए, टोटल सार निकला, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, फ्रेंड का संबंध। फिर दीदी एक मिनट साइलेंस हो गई और सबको देखती रही, दृष्टि देती रही, साजन का संबंध किसी ने भी नहीं बोला था। तो दीदी कहती है आप साजन के संबंध से बाबा को याद नहीं करती हो, दीदी ये संबंध तो जरा भी अच्छा नहीं लगता है, है? मुठी तुमने बाबा को अपना साजन नहीं बनाया ना, ये माया तुझे खींच के ले जाएगी उस दुनिया में। पर दीदी के संबंध जोड़े कैसे, आता ही नहीं है। फिर दीदी है तो शरूर ना बहुत और रमणीक भी, कहती मैं सिखाऊं कैसे करना है, कैसे संबंध जोड़ते हैं। देखो सजनी, शाम के समय साजन सारा दिन नौकरी पर होता है, बिजनेस में होता है, शाम को तैयार होके बैठी होती है अपने साजन के इंतजार में कि कब आए, वो आएगा, जो भी चाय नाश्ता उसको देना है देके, फिर सारा दिन की जितनी खट्टी मीठी बातें हैं सारी उसको सुना देगी, कुछ रखेगी नहीं अंदर, आज ये हुआ ये हुआ, उसने ये बोला, इसने ये किया, उसने ये किया, और सब सुना करके खुद खाली हो जाएगी। अभी तू जान, तेरा काम जाने। फिर रात को फ्रेश होकर के सारे दिन के जो कपड़े हैं ना उसके साथ में नहीं सोने का, रात को अपने ड्रेस चेंज करके सो, दिन के कपड़ों से नहीं, डस्ट गंदी सारा दिन के वाइब्रेशंस, बिल्कुल स्वच्छ होकर के फिर साजन के साथ सोएगी। फिर उस समय क्या करेगी, जो पर्सनल प्राइवेट बातें हैं ना वो उस समय करती हैं, जो बातें किसके साथ नहीं करेगी वो साजन के साथ करती है, अंदर की दिल की लेन देन। ऐसे शिव बाबा को आप अपना साजन बनाओ, नहीं तो आएगा ये बात किसको कहूं, फिर इसको कहेंगी, उसको कहेंगी, फलाने को कहेंगी, किसी को अपना दिल दे बैठेंगी तुम, माया रावण ले जाएगा। इसलिए एक भी संबंध ऐसा ना हो जो बाबा से अनुभव ना किया हो। हर संबंध का रस, हर संबंध की प्राप्ति बाबा के साथ करो, नहीं तो वही संबंध आपके लिए विघ्न बन जाएगा। तो एक बार बड़ी दादी ने, अभी ये मेडिटेशन हॉल नहीं था, सिर्फ हिस्ट्री हॉल था, मुरली भी वहीं चलती थी। आप सोचो 25 मधुबन में आ गए तो फुल सीजन रश हो गई है मधुबन में, 25 लोग आ गए हैं, और सुखधाम भी नहीं था, राजयोग भवन है ना वो ही था, कुंज भवन भी नहीं था, और शिविर उस समय राजयोग भवन में चलती थी, बस 20-25 वहां रह सकते थे। तो एक बार प्रेस वालों का ग्रुप आया हुआ था शिविर के लिए, तो जब शिविर पूरी होती थी तो लास्ट डे वो लोग सुबह में मुरली क्लास में आते थे अपना अनुभव सुनाने, तो सब मुरली क्लास में आए, मुरली का लास्ट वाक्य पूरा होने की तैयारी थी, और बाबा ने पूछा आपको कितने बच्चे हैं, तो जिनको दो बच्चे थे उन्होंने कहा दो मेरे हैं, एक तीसरा शिव बाबा है, किसको एक था उसने कहा दूसरा मेरा शिव बाबा बच्चा है। फिर करीब उस समय हम 25-30 कुमारियां थी, दादी पूछती है कुमारियों को बच्चा है क्या, तो सबने कहा दादी एक बच्चा है। प्रेस वाले बैठे हुए थे वो तो ऊपर नीचे, दादी कहती है देखो ये कुमारियां कहती हमको एक बच्चा है, अब बताओ कुमारियों को बच्चा होता है क्या। तो हैरान हो गए, कुछ जवाब नहीं दे, तो कहा भगवान से हमारे सर्व संबंध है, वो हमारा सब कुछ भी है, माता पिता भी है तो शिक्षक भी है तो सतगुरु भी है तो साजन भी है तो सखा भी है तो बच्चा भी है। हर संबंध की अनुभूति हम बाबा से करें, तो कोई ऐसा संबंध ना हो जो हमारे लिए विघ्न बन जाए और बुद्धि उस तरफ खींच करके चली जाए। इसलिए बाबा ने जो हमको श्रीमत और शिक्षाएं दी हैं वो सर्व संबंधों सहित, उन एक एक संबंध का हम बाबा से अनुभव करें तो स्थिति न्यारी भी रहे प्यारी भी रहे, और बाबा से आत्मा को फिर जो एक्स्ट्रा शक्तियां मिलती हैं वो शक्तियां आत्मा को अचल अडोल और स्थिर बना लेती हैं, और विशेष सारा दिन भर स्वयं को निर्विघ्न बनाने के लिए जैसे अमृत वेले ज्ञान सूर्य बाबा से लाइट और माइट से अपने को भरपूर किया, तो सारा दिन फरिश्ता स्थिति, हल्के रहे, डबल लाइट रहे, और दूसरी बात सार स्वरूप में स्थित रहें, कोई भी बातों के विस्तार में नहीं जाएं। झाड़ है विस्तार और सार है बीज। बिंदु रूप की स्थिति का बार बार अभ्यास करें। बाबा ने इतना अच्छा एक एक घंटे का हमको साइलेंस का ट्रैफिक कंट्रोल दिया है, उस एक मिनट में हम अपने को ये अभ्यास करें। और ये बिंदु सार की स्थिति विस्तार से परे ले जाएगी, और जितना सार स्वरूप में रहेंगे निर्विघ्न स्थिति रहेगी, विघ्न विनाशक बनेंगे, और जो लक्ष्य मिला हुआ है उस लक्ष्य पर पहुंचेंगे। अर्जुन का मिसाल है ना, ना वृक्ष दिखता है, ना चिड़िया दिखती है, ना आंख दिखती है, सिर्फ वो डॉट दिखाई देता है। इतनी एकाग्रता, इतना सार स्वरूप में स्थित। और दूसरा फिर उसका मिसाल पानी में देख करके ऊपर मछली की आंख को, उस डॉट को, उसको तीर लगाना है। इतनी एकाग्रता, इतनी बुद्धि सार में स्थित हो जाए तो स्वतः ही बाप दादा जो चाहते हैं खुद भी निर्विघ्न रहेंगे और साथियों को, सहयोगियों को, परिवार को, अपने वर्क प्लेस को, सबको निर्विघ्न बनाते विघ्न विनाशक की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत भरपूर आप सब होते जा रहे हैं। शारदा दीदी को भी कल मैं स्पेशल नीचे जाकर के मना करके आई थी, ये जल्दी यहाँ नहीं कर रहे थे, तो मैंने भी हक से कहा, मैंने कहा आपको आना ही होगा, बस हाँ मैं पूछ नहीं रही। कभी कभी तो छोटे भी तो बड़ों को ऑर्डर कर देते हैं ना कि आपको आना ही।
सच में बिंदु बैनी खींच करके लाई।
तो बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत पावरफुल बातें हम सबको बताई, और एक भी बात उसमें से जो मैंने विशेष पकड़ी, जो तो सारी बातें ही पकड़ने वाली हैं, लक्ष्मण रेखा, जैसे सीता का उदाहरण दिया कि एक बारी पार करने से कितना नुकसान हुआ उसको, लेकिन हम दिन भर में इतना ध्यान रखें, हमारे लक्ष्य रूपी लक्ष्मण रेखा, श्रीमत रूपी लक्ष्मण रेखा कभी भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ताकि रावण का कोई भी इफेक्ट हमारे पर ना हो, ऐसा विशेष ध्यान रख करके, और इन सारी बातों को अपने भीतर समा करके, धारणा में ला करके, जो विशेष दीदी जी हमारे बीच में आए हैं, तो इसका मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हम सब मिलकर के पूरा रिटर्न देंगे, और ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छा टर्निंग प्वाइंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय दीदी जी का।
अब तेरे